समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। और चूंकि कल बहुत बड़ा दिन है, मतगणना का दिन है, तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं अपने संवाददाताओं से जानेंगे। और खेल के मैदान की हलचल होगी और उतार चढ़ाव पर नजर रहेगी आर्थिक जगत के। इसके अलावा बात करेंगे उन व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड बाकी सब तो खबरें हैं ही, कल बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आज आर्थिक जगत की बहुत बड़ा दिन रहा क्योंकि सिर्फ उतार नहीं, सिर्फ चढ़ाव पे ही दिखा पूरा सेंसेक्स। टोटली यू नो ब्रेकिंग, ब्रेथ टेकिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन अचीव्ड ओवर देयर, सो वील ऑफ कोर्स टेक अ लुक एट व्हाट्स हैपेंड टुडे एट सेंसेक्स। सो जागृति हैज ऑलरेडी टोल्ड व्हाट वी विल लुक फॉरवर्ड टू।
और आज का दिन खास एक और इवेंट के लिए भी है, हमारे हेल्थ पर्पज से जो साइकिलिंग हम लोग करते हैं उस साइकिल को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, तो हम इस पर भी बात करेंगे अपने सेगमेंट डेटलाइन में।
हम लोग साइकिलिंग कम कर पाते हैं, बस सोचते ही रहते हैं कि अब शुरू करेंगे, बट मे बी आफ्टर टुडे शो व्हेन वी मोटिवेट अदर्स, समबडी वुड मोटिवेट अस टू ऑल्सो यू नो लीव आर काउच पोटेटो, यू नो जस्ट लीव आर काउचेज एंड गो एंड हिट द पेडल। So on that note, let's begin today's show. It's me, Saira, with Jagriti, and let's start with the headlines. All arrangements put in place for counting of votes for Lok Sabha polls tomorrow. Counting for assembly elections in Andhra Pradesh and Orissa to also take place simultaneously.
लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 31 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं ने वोट डाले, जो दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा।
Prime Minister Narendra Modi says world of 21st century is looking towards Bharat with many hopes.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सड़क हादसे में 13 लोगों की मृत्यु, 15 घायल।
सेंसेक्स एंड निफ्टी हिट ऑल टाइम हाई इन अर्ली ट्रेड।
और T20 क्रिकेट विश्व कप में नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में 11 रन से हराया।
And now it's time for Dateline India, and Jagriti has already told you that today is World Bicycle Day. So, zahir si baat hai, aaj hum log discuss karenge World Bicycle Day.
जी हाँ, साइकिल की जब बात की तो जैसे साइकिल का जब नाम आता है सायरा, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें याद आने लगते हैं। और खासकर जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे उस टाइम पर साइकिलिंग हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। और आप याद करिए कि उस टाइम शायद आपको इतनी बीमारियां, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी।
जब आपने कहा ना साइकिल का जिक्र होता है तो कुछ याद आता है, तो मुझे तो अपनी सबसे पहली साइकिल, दैट वाइट एंड रेड हीरो साइकिल विद सपोर्टर्स, आई थिंक most of the kids of the 90s would have seen that model, sabko wahi yaad aata hoga. And yes, apart from that, on you know, if we talk about World Bicycle Day, it's celebrated every year on 3rd of June.
जी हाँ, हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस आज के दिन मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करना है। नियमित तौर पर साइकिल चलाना शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, इससे वजन कम करने में मदद तो मिलती ही है, इसके अलावा भी कई सारे जैसे फायदे हैं। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाने से हृदय रोग, मोटापा, मानसिक बीमारियां, डायबिटीज, गठिया रोग जैसी जो गंभीर बीमारियां, जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज जिन्हें अब कहा जाने लगा है, इनसे आप बच सकते हैं। यही नहीं, नियमित साइकिल चलाने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइकिल है उसमें आपको पॉल्यूशन से आप बचते हैं, और पॉल्यूशन तो आपके हर हेल्थ को बिगाड़ता है और हर लेवल पे बिगाड़ता है।
यस, इनफैक्ट नॉट ओनली इट्स यू नो इट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली ऑन आर हेल्थ बट ऑल्सो ऑन द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स इन साइकिल। तो कह सकते हैं यू नो इवन इन सिटीज वेयर द you know, for short distances, whether you are going to do groceries or just going to nearby areas. And if you are all by yourself, so I think cycling is a better option, isn't it?
बिल्कुल. और आज के समय में जब लगातार व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में वातावरण में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है. और कई देशों में सायरा हमने देखा है, खबरें आती रहती हैं कि वहां पर जो वीआईपीज भी हैं वो साइकिल का इतना इस्तेमाल करते हैं अपने घर से ऑफिस जाने के लिए भी. कई सारे तो वहां पर पार्लियामेंट्रियंस भी ऐसे हैं जो पार्लियामेंट जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. और इससे होता क्या है कि आम जनता में जो जागरूकता आती है, उनको लगता है कि जब हमारे यहाँ के जो वीआईपी हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, और इन चीजों को जब जागरूकता का जब भी कोई इश्यू आता है तो उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जब ये अवेयरनेस के कैंपेन से जुड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है.
एब्सोल्युटली जागृति. I think somehow in this, I think we should learn a bit from the West, because I remember when I was in Lucknow and I was supposed to interview a British writer. So he had come to Lucknow for a very brief period of time, and while I was waiting for him and then he came, I noticed that he came on a cycle. Imagine, he was here for in India for just 1 month or 2 months. So unhone kaha, I, instead of renting a cab or a taxi, I just have hired a bicycle. It's not only cheap, it's good for my health, and I get to explore the city more. So I was quite amazed that he was all, you know, what we say, suited, booted, and he was riding a bicycle and he came. I think Westerners are more open in that, and Indians ko kahin na kahin pata nahi kis cheez ki
jhep kya kahenge.
Yes, absolutely.
Hota hai ki log kya kahenge, hum cycle par chal rahe hain to status ko isse hamare match kiya jayega.
I think that's only reflective of very poor self confidence, because if you have confidence in yourself, then whether you are riding a bicycle or a Mercedes, you would know that that confidence has not come from the vehicle but from your own personality. And well, according to the World Health Organization, safe infrastructure for walking and cycling is also a pathway for achieving greater health equity. For the poorest urban sector, who often cannot afford private vehicles, walking and cycling can provide a form of transport while reducing the risk of heart disease, stroke, certain cancers, diabetes, and even death. Accordingly, improved active transport is not only healthy, it is also equitable and cost-effective. Meeting the needs of people who walk and cycle continues to be a critical part of mobility solution for helping cities decouple population growth from increased emissions and to improve air quality and road safety. The COVID-19 pandemic has also led many cities to rethink their transport systems.
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हम लोग यही कहेंगे. और ये आकर्षित भी इसीलिए करता है साइकिल, क्योंकि ये परिवहन का एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है. साइकिल स्वच्छ हवा और कम भीड़ भाड़ में भी कहीं कहीं योगदान करती है. और अभी आपने भी कहा कि आप जिस राइटर से इंटरव्यू करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये चीप ऑप्शन है, तो कहीं न कहीं आपका फाइनेंशियल इससे फायदा है इसमें. और सायरा, एक खास बात और है कि बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में हमने देखी हैं जिसमें हीरो हीरोइन को साथ में लेकर वो साइकिल पर जो चलते हैं और उस पर जो शूट करते हैं. ऐसी ही एक पुरानी फिल्म है जिसमें हीरो अपनी हीरोइन को लेकर चल रहा है. हम उसका एक गीत यहाँ पर सुनते हैं.
माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं, अरे माइकल है तो साइकिल है. माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं, दिल है तो दिलदार भी है.
दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं.
दिल है तो दिलदार भी है.
दिलदार नहीं तो दिल भी नहीं.
What a beautiful, lovely, peppy number. And जो पुरानी cycles हुआ करती थी, and though how nostalgic you feel about them, but modern bicycles are far from mundane. They come equipped with smooth gears and advanced transmission systems that make riding not only efficient but also enjoyable. In fact, अब तो gears भी आने लगे हैं, so you can actually control the speed of all, you know, of your bicycle as well. And investing in an adult gear bicycle can be your first step towards an eco-friendly lifestyle. These bikes provide a smooth and fun riding experience, encouraging more people to opt for them over cars for short trips. And Jagriti, you were talking about how cycling also improves mental health. I chanced upon a book by Lance Armstrong. That was his biography. He's a famous cyclist. Every second counts. I think every one of us should read that book to get some motivation and inspiration, and how cycling can be a good, you can say, exercise not just for your physical health but also for your mental health.
बिल्कुल, और रिसर्च में भी ये सामने आया है सायरा कि रोजाना अगर आप 40 मिनट की साइकिलिंग करते हैं तो इससे आपका मन शांत और खुश रहेगा. यानी कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, रिसर्च स्टडीज इस बात को कहते हैं. और आज ये कई सारे अखबारों में भी ये मैं देख रही थी क्योंकि विश्व साइकिल दिवस पर उन्होंने बड़ी खास खबरें आज पब्लिश की हैं. उसमें उन्होंने एक कहीं खबर पढ़ रही थी कि भीलवाड़ा में एक अनूठे अंदाज में बाराती साइकिल से विवाह स्थल पर पहुंच गए.
And if we just, before we wrap up our segment, we'll just tell our listeners that some of the best cycling routes in India are there and it will truly make you happy. The Para Road in Goa, from Chennai to Pondicherry, from Manali to Leh, Mysuru and Munnar. All these beautiful places, they offer some breathtaking views, and if you're on your bicycle, then nothing like that.
और साइकिल की सवारी के बाद अब परिक्रमा करते हैं, अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है आज. तो हमने जैसी बात कही कि कल मतगणना को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो सबसे पहले हम चलते हैं अंडमान निकोबार, जहां पर एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतगणना हेतु व्यापक प्रबंध किए गए हैं. द्वीप समूह में इस बार के चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इनमें भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
द्वीप समूह में कल होने वाली मतगणना के लिए पोर्ट ब्लेयर में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है. द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने बताया कि मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे आरंभ होगा. सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में मतगणना का कार्य आरंभ हो जाएगा. मतगणना केंद्र के 2 हॉल में 14-14 के हिसाब से कुल 28 टेबल लगाए जाएंगे. 15 चरण में मतगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. ईवीएम में मतगणना का कार्य पूरा होने के बाद बेतरतीब तरीके से चयनित मतदान बूथ से वीवीपैट पर्चे का मिलान किया जाएगा. निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. 3 स्तरीय सुरक्षा रहेगी. मतगणना के कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें पहचान पत्र भी जारी किए गए हैं. मतगणना की निगरानी के लिए सामान्य पर्यवेक्षक भी द्वीप समूह पहुंच चुके हैं और वे भी कल पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. मतगणना के कार्य से जुड़े सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मतगणना के कार्यों को सुचारू बनाने का अनुरोध भी किया गया है. चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के अलावा पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में स्क्रीनिंग के माध्यम से आम जनता की सुविधा के लिए चुनाव परिणाम घोषित करने की व्यवस्था की गई है. परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल.
एंड नाउ वी गो टू केरला वेयर द कैपिटल सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ कार्टून एक्सपो. इन फैक्ट इट्स ऑलरेडी बीइंग हेल्ड देयर एंड द बैकड्रॉप ऑफ दिस एक्सपो इज जनरल इलेक्शंस 2024. वी हैव अ रिपोर्ट.
As hours are left for the result of the parliamentary election, this cartoon expo is focusing on the cartoons that made people laugh and think on the political developments during the election period. The exhibition of cartoons made by the members of the Kerala Cartoon Academy was held from June 1st to 3rd. The exhibition is being prepared in collaboration with the Kerala Cartoon Academy and Tiruvananthapuram based cultural organization Kala and Coffee House Kottayama. As many as 75 cartoons made by Kerala Cartoon Academy members was put on display in the expo. These cartoons were selected by a 3-member jury. A special coffee and cartoon comedy event was also held on the concluding day. This unique section saw the Lok Sabha election candidates, political leaders, media professionals and cartoonists sharing their amusing and interesting experiences from the election campaign over the exhibition's 3 days. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
केरल से अब हम आते हैं पंजाब की ओर, जहां पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 62.8% मतदान दर्ज किया गया. राज्य के 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले आगे रहीं, जबकि कुल मतदान में ये अंतर महज 0.99% का ही रहा. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट.
दुनिया के महानतम लोकतंत्र भारत के चुनावी पर्व के महायज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति डालने में सीमावर्ती राज्य पंजाब की महिलाएं भी कतई पीछे नहीं रहीं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आईं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गुरदासपुर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने कहीं अधिक मतदान किया है, जबकि कुल मतदान में भी महिला व पुरुष के बीच मतों का ये अंतर महज 0.99% का है। गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 68.89% महिलाओं ने मतदान किया। जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले में 1.41% अधिक मतदान किया है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे पंजाब में भले ही बठिंडा का तापमान कई दिनों से राज्य में सबसे अधिक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे अधिक मतदान करने में भी बठिंडा राज्य भर में पहले स्थान पर रहा, जहां 67.02% मतदान दर्ज किया गया। सबसे कम मतदान अमृतसर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 56.66% दर्ज किया गया है। राज्य में थर्ड जेंडर के पंजीकृत 773 मतदाताओं में से 280 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। थर्ड जेंडर में सबसे अधिक मतदान फतेहगढ़ साहिब आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 65.27% दर्ज किया गया और 55.88% के साथ बठिंडा दूसरे, जबकि 52.27% के साथ जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
ऑन 3rd June 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रीच्ड नीमच मध्य प्रदेश एज द सीपॉयज रोज इन द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। A brigade of native Bengal troops stationed at Nimach mutinied and marched to Delhi. Nimach was the most southerly place to which the uprising extended. European officers took refuge in the fort in the city and were later besieged by independence activists from Mandasaur. The British defended the city until relieved by the Malwa field force.
Historically, Nimach was the location of a palace in the district of the Ajmer province. Originally, a part of the territory of Udaipur princely state, it was given to the Sindhias in 1768 to pay off debts incurred by the king of Mewar. After that, it became a British cantonment of Gwalior princely state.
After the uprising was suppressed, the city became the headquarters of the Malwa.
We remember revolutionary freedom fighter Abani Nath Mukherjee, who was born on the 3rd of June 1891 in Jabalpur, Madhya Pradesh. While studying in college, Abani got inspired by the revolutionary freedom movement against British colonialism in India.
After completing his studies, Abani left India and joined the network of Indian revolutionaries residing abroad. He took charge of raising funds and collecting arms and ammunition in Germany and Japan, and supplying these to the revolutionaries resisting colonialism on Indian soil. Mukherjee came back to India in 1912 and continued his work by joining a revolutionary organization in Uttar Pradesh. He was arrested by the British in Singapore while returning from Japan.
Abani, however, managed to escape to Europe and established Indian Independence Party in 1922 in Berlin with the help of comrades like Suren Kar, Bhupendranath Datta and Muhammad Barkatullah. He also secretly visited Chennai, Kolkata and Dhaka and lived in India till 1924. Abani retired from active revolutionary politics and went to the USSR, where he engaged himself in literary works. Abani died in exile on the 28th of October 1937. We salute the great Indian.
On June the 3rd, 1947, the last British Viceroy of India, Mountbatten, proposed the June the 3rd plan, which is also called the Mountbatten Plan. The plan included the principles of partition, autonomy, sovereignty to the two new nations and their right to make their own constitution. The princely states were given a choice to either join India or Pakistan. This plan was put into action by the Indian Independence Act 1947, which was passed in the British Parliament and received royal assent on 18th of July 1947.
According to the provisions of the Mountbatten Plan, British India was to be partitioned into two dominions, India and Pakistan. The constitution, framed by the Constituent Assembly, already formed in 1946, would not be applicable to the Dominion of Pakistan, and the question of its separate Constituent Assembly would be decided by the new Dominion. The princely states were given the choice to either remain independent or accede to India or Pakistan.
The British suzerainty over these kingdoms was terminated. To fix the international boundaries between the two countries, the Boundary Commission was established, chaired by Cyril Radcliffe. The commission was to demarcate Bengal and Punjab into the two new countries. The date for the transfer of power was to be August the 15th, 1947.
The consequences of the partition continue to affect the new nations and their citizens.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
Election results of the world's largest democracy by the oldest and the most trusted broadcaster of the country.
On 4th of June, every minute's update of vote counting from 7 a.m. to 10 p.m.
Know who took the lead and who trailed.
Accurate information from every seat, who won and who lost.
Listen to what we, the people of India, decided.
Tune into Akashwani Gold and other Akashwani channels for Lok Nirnay 2024.
Time for business news now. Indian benchmark indices closed at record high, with both Nifty and Sensex rising over 3%. The markets were led higher on optimism about the incumbent BJP-led NDA coming back to power, as indicated by various exit polls for the 2024 Lok Sabha elections. Apart from that, better-than-expected GDP print for financial year 2024 and other positive global cues added to the positive momentum. Sensex, which had opened at a record high of 76,583, climbed further to touch 76,738 points in intraday trades, which is the 30-stock index's fresh all-time high. At close, the Sensex had paired some of gains at 76,468, up by 2,507 points or 3.39%. Similarly, the Nifty 50 also opened at a record high of 23,337 points. It created a fresh all-time high by climbing to 23,339. At close, the 50 stock index was at 23,264, up by 733 points or 3.25%. In the forex market, rupee jumped to over 2-month high closing level and settled with a gain of 28 paise at 83.14 against the dollar. In global crude market, Brent crude was trading at $80.89 per barrel. In the global commodity exchange for 5th June 2024 contract, gold is trading at 71,550 rupees per 10 grams. Silver for 5th July 2024 contract is trading at 91,676 rupees per kilo when reports last came in.
और खेल के बारे में बात कर लेते हैं. आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में किंगस्टन ओवल में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की. ओमान ने 10 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए. मेहरान खान की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत ओमान मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहा. वहीं सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम ने बिना विकेट खोए 21 रन बनाए. नामीबिया के डेविड वियसे की शानदार गेंदबाजी ने ओमान की टीम को एक विकेट के नुकसान पर मात्र 10 रन पर ही रोक दिया. और आज एक अन्य मैच में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा. और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में दुग्ध क्रांति के जनक त्रिभुवन दास पटेल की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले त्रिभुवन दास कृष्ण भाई पटेल को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने दूध के उत्पादन का प्लांट लगाया और इस तरह से अमूल, जिसे आज घर घर में हम जानते हैं, इसकी स्थापना हुई और इस व्यवस्था से गुजरात में पूरे साल दूध का उत्पादन होने लगा। विकास के अगले क्रम में कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर दूध के पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और बच्चों के लिए मिल्क फूड का भारत में पहला प्लांट खड़ा किया। ये दुनिया में एक अनोखा अकेला प्लांट बना जो भैंस के दूध को पाउडर में बदल सकता था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए त्रिभुवनदास पटेल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।
Today we are also remembering actor Jay Shankar, who worked predominantly in Tamil cinema, a very notable lead actor in the 1960s and 70s, who was credited on screen with the title of Makkal Kalainar, or People's Artist, or Makkal Tamiran, People's Tamar, in most of the films that starred him. And we have a song from one of his films. Let's listen to it.
നാണത്താളെ കണ്ണം നിന്ന് നിന്ന് നടത്തും നാടകം എന്ന്
കാതലാലെ കാൽകൾ പിന്ന പിന്ന കാതലാലെ കാൽകൾ പിന്ന പിന്ന കനിയും കാവ്യം എന്ന്
നാണത്താളെ
हिंदी साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट की आज जयंती है। बालकृष्ण भट्ट को गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटकों की रचना करके हिंदी को एक समर्थ शैली प्रदान की। ये ऐसे पहले निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग किया था। भारतेंदु युग के दैदीप्य मान मौन विभूति होने के साथ साथ बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग के लेखकों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी रहे।
टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग बाबूराव कृष्णराव मिस्त्री, पॉपुलरली नोन एज बाबूराव पेंटर, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। ही वॉज अ फिल्म मेकर एंड आर्टिस्ट। इन फैक्ट ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स विद प्रोफिशियंसी इन पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म प्रोडक्शन, फोटोग्राफी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। He was born in a simple family in Kolhapur, Maharashtra, and only studied till class 4 or 5 in a Marathi medium school. His father, Krishnarao Mistry, was a blacksmith and carpenter by profession, but he also excelled in painting, stone and marble sculpting along with ivory carving. Thus, Babu Rao inherited art from his father and learned the basics of the same from him. He also taught himself to paint and sculpt in academic art school style. In the company of his cousin, he also became fascinated with oil painting, photography and filmmaking. And well-noted theatre artist Keshav Rao Bhosle, the owner of Lalit Kala Darsh Natak Mandali, hails from Kolhapur as well. In 1909, he invited the brothers to Mumbai to paint the stage backdrops for his plays. We are also remembering Uday Chandrika, better known by her screen name Radha today. It's her birthday. A former Indian actress who predominantly appeared in Tamil and Telugu films, in addition to a few Malayalam, Kannada and Hindi films. We have a song.
बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए बहुचर्चित शारदा एक्ट के प्रकल्पक, लेखक, न्यायविद और प्रसिद्ध शिक्षाविद हरविलास शारदा की आज जयंती है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपीरियोरिटी है। इस ग्रंथ में उन्होंने प्रमाण सहित सिद्ध किया है कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिन्दू सभ्यता अन्य देशों से बहुत आगे थी।
Today we are also remembering Sarika on her birthday today, an actress and costume designer. And because very less time is left, so let's quickly listen to one of her songs.
Mm-hmm.
और इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और सायरा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।